रेडियो मधुबनस्य श्रोतृवृन्दाः नमस्करोमि, स्वागतं च व्याहरामि। अस्मिन् श्राव्यमञ्चे इदानीं वयं पातञ्जलयोगसूत्रस्य पाठं पठिष्यामः। रेडियो मधुबनस्य श्रवणमञ्चे अद्य अहं त्रयोदशस्य सूत्रस्य आरम्भं करोमि। महर्षि पतञ्जलिमहोदयः लिखति, तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः, तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए चित्त में अभ्यास और वैराग्य दोनों को बैठा लेना आवश्यक है। यहाँ एक शब्द का प्रयोग हुआ है, स्थितौ, तो यह स्थिति शब्द की सप्तमी का एक वचन है और तत्र स्थितौ अर्थात वहाँ रहने में, तो वहाँ का अर्थ हुआ ऐसी अवस्था में रहना जहाँ पर वृत्तियाँ हमें विचलित ना कर सके। तो आगे कहते हैं यत्नोभ्यासः, तो ऐसी स्थिति में रहने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, यत्न किया जाता है, उसी का नाम अभ्यास है। अर्थात वह स्थिति जब वृत्तियाँ हमें प्रभावित ना कर सकें या आकर्षित ना कर सकें, वह चित्त की स्थिति अपने आप नहीं आती है, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। तो मुनि कहते हैं कि यह जो चित्त को स्थिर करने के लिए या वृत्तियों का निरोध करने के लिए ये जो दोनों आवश्यक हैं, अभ्यास और वैराग्य, उसमें से अभ्यास क्या है इसका अब मैं वर्णन करता हूँ। और वह कहते हैं कि यत्नो अभ्यासः, प्रयत्न करना ही अभ्यास है। चित्त सदा अभ्यास में लगा रहे और वैराग्य में लगा रहे, इसके लिए जो यत्न करना पड़ता है, जो प्रयत्न करना पड़ता है, वही अभ्यास है। और अगले सूत्र में इसकी और अधिक व्याख्या करते हैं। कहते हैं, सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। तो जिस समय अभ्यास को हम बहुत काल तक, दीर्घ काल तक और नैरंतर्य अर्थात निरंतरता से, और यहाँ एक संधि है सत्कारा सेवितो, आसेवन अर्थात अनुष्ठान करना, और यहाँ सत्कार शब्द का अर्थ श्रद्धा लिया गया है। श्रद्धा अर्थात यह विश्वास कि मुझे इस दीर्घकाल अभ्यास से कैवल्य की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, यह विश्वास वही है आस्था या सत्कार। तो दीर्घकाल प्रयास करना, निरंतरता से प्रयास करना और आस्था के साथ प्रयास करना, इन तीनों के माध्यम से जब अनुष्ठान किया जाता है अर्थात अभ्यास चलता रहता है, अभ्यास का अनुष्ठान किया जाता है, तब एक दृढ़ भूमि तैयार होती है अर्थात एक ऐसी मनोवृत्ति तैयार होती है जो कि अडिग हो, भूमि की तरह दृढ़ हो, ताकि फिर उस अभ्यास से या उस वैराग्य से हमारा मन भटक ना जाए। आगे कहते हैं, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो अभ्यास के वर्णन के बाद अब मुनि ने वैराग्य का वर्णन किया है और वैराग्य के विषय में बताया है कि वैराग्य क्या है। तो यहाँ एक बड़ी संधि है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य, इसमें कौन कौन से शब्द हैं इनको अलग हटा करके देखते हैं। दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्ण, तो दृष्ट शब्द का अर्थ हुआ वह सुख या वह उपभोग जो इंद्रियों के द्वारा भोगे जाते हैं, और आनुश्रविक किसे कहते हैं कि जिनके विषय में हमने सुन रखा है कि हाँ ये बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जिसे हम कहते हैं कि स्वर्ग है, या किसी दूसरे देश में कोई बहुत बड़ा सुख या उपभोग, किसी बहुत बड़े सुख या उपभोग की सामग्री है, तो वह हो गया आनुश्रविक विषय, क्योंकि उसके विषय में सुन करके हमारी लालसा उसके लिए उत्पन्न हो जाती है। तो दृष्ट हुआ वह जो हमें प्रत्यक्ष उपलब्ध है उपभोग के लिए, और आनुश्रविक वह जो तत्काल उपलब्ध नहीं है परंतु सुन रखा है और इसलिए उसकी लालसा है। दृष्ट और आनुश्रविक ये दोनों प्रकार के जो विषय हैं इनकी जब वितृष्णा हो जाती है अर्थात इनसे जब हमारा मन हट जाता है और वशीकार चित्त को जब हम वश में कर लेते हैं तब ऐसी स्थिति को वैराग्य कहा जाता है। अर्थात जब हम सामने रखे गए उपभोगों के प्रति और सुने हुए या जिसकी लालच हमें दी गई है ऐसे विषयों के प्रति दोनों के प्रति जब हम अपने मन में वितृष्णा पैदा कर लेते हैं अर्थात उनमें हम कोई आसक्ति नहीं रखते उनके प्रति कोई तृष्णा नहीं रखते तब उस अवस्था का नाम है वशीकार वैराग्यम। तो इस प्रकार वैराग्य क्या है इसे मुनि ने समझाया है। मुनि कहते हैं कि इस प्रकार जब दृढ़ भूमि तैयार हो जाती है तो फिर हमारे चित्त पर वृत्तियों का प्रभाव कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है और आत्मा जो है या दृष्टा जो है वह अपने आप को अच्छी तरह से पहचान पाता है देख पाता है। इसी अवस्था का नाम वशीकार संज्ञा है और यही संकल्पना भगवद गीता में भी बताई गई है जहाँ कहा है कि वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इस वशीकार की अवस्था में जब साधक आता है तो इंद्रियां उसके वश में हो जाती हैं इसलिए ऐसे वैराग्य को वशीकार वैराग्य कहा जाता है। तो मित्रों ज्ञानी जन बताते हैं कि वशीकार वैराग्य की अवस्था हम तत्काल तो नहीं पा सकते यह प्रयत्न पूर्वक पानी पड़ती है। तो इस वैराग्य की स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें कुछ अलग अलग सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है वैराग्य की अलग अलग स्थितियों से हमें गुजरना पड़ता है। तो उनका नाम है यतमान संज्ञा वैराग्यम व्यतिरेक संज्ञा वैराग्यम एकेंद्रिय संज्ञा वैराग्यम और अंततः जब हम सूक्ष्मातिसूक्ष्म रूप में भी हमारे चित्त में कोई वृत्तियों के दोष को नहीं रहने देते तब उस अवस्था को वशीकार संज्ञा वैराग्यम कहते हैं। इसी को अपर वैराग्य भी कहा गया है इसी को विवेक ख्याति भी कहा गया है और इसी को संप्रज्ञात समाधि की अवस्था भी कहा गया है। तो मित्रों आज मैं यहाँ रुकती हूँ क्योंकि पतंजल योग सूत्र की भाषा यद्यपि सरल है लेकिन उसमें जो संकल्पनाएं हैं उन्हें समझने के लिए हमें भारतीय तत्व दर्शन को समझना पड़ता है और वे संकल्पनाएं थोड़ी सी व्याख्या मांगती हैं। तो जब हम उन्हें व्याख्या करते हुए समझने का प्रयास करेंगे तो सूत्रों के पढ़ने की हमारी गति थोड़ी कम होगी और सूत्रों के पीछे अंतर्भूत जो चिंतन है या दर्शन है उसे हम समझते हुए चलेंगे। तो अब लीना महेंदले को अनुमति दो मैं आज यहीं रुकती हूँ। तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन सुनते रहो पठामी संस्कृतम मुस्कुराते रहो नमस्कार।